Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hariyo. Pujya Maharaj ke charan mein pranam. कुछ कारण से परम पूज्य माधवानंद गिरि जी महाराज कुछ दो दिन के बाद आने वाले हैं और तीन तारीख से पूज्य महाराज जी को हम सुनेंगे माधवानंद जी महाराज को. और जो शिव महिमा सूत्र बहुत ही अच्छी तरह 5-6 दिन हमने श्रवण किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी को विनंती की कि ईश्वर की दया से दो दिन और उपलब्ध अपने को मिल गए हैं, तो उसमें जो भी यहाँ बाकी श्लोक है उसको हम सुने और उसका जो ये पवित्र नवरात्रि मास है उसमें इसमें श्रवण करें. मैं महाराज जी से विनती करूँगा कि जो भी प्रवचन यहाँ है वह अपना शुरू करें. आप सबकी तरफ से मैं महाराज जी को वंदन करता हूँ. हरिओम.
ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये श्यामि प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनिषो वातितृणम् बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यसे मदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम पुरी जी महाराज की. शिव महिमा पर विचार चल रहा है, नौवें श्लोक से विचार चलेगा. 8 तक विचार हम लोगों ने कर लिया था. एक ब्रह्मा जी के कार्यकाल में 14 मनु दिन में होते हैं, 14 रात को. जब ब्रह्मा जी कि कार्यकाल में एक मनु बदलते हैं ना, दूसरे मनु आते हैं, तो बीच का गैप होता है, तो उसमें जो है ना ब्रह्मा जी को फिर बीच में करना पड़ता है। ऐसे हमारे गिरीश भाई ने प्रार्थना किया, हमने कहा ठीक है भाई, क्योंकि जब एक मनु जाएंगे दूसरे मनु महाराज आएंगे तब प्रारंभ होगा। ऐसे ही दो महीने कार्यकाल में हमारे श्रवणानंद जी महाराज के बाद में गैप रहा, फिर माधवानंद महाराज जी के बाद में, प्रणोचतन जी महाराज जी के बाद में। तो ये जो वर्ष चल रहा है स्वर्ण निर्वाण महोत्सव है ना, स्वर्ण निर्वाण महोत्सव। निर्वाण का अर्थ तो सब जानते ही हैं, निर्वाण शब्द का अर्थ होता है निर्गतो वाणः अविद्यादिह दोषायस्मात् तत् निर्वाण। गीता में भगवान ने निर्वाण पद की बहुत महिमा गाई है। दुनिया में जितने भी पद हैं सारे पद आपदाओं से घिरे हैं, एक निर्वाण पद ही है जो निरापद है। ये वाण है अविद्या कामना वासना, अनादिकाल से जीव के हृदय में जो कामनाएं हैं इदम मिश्यात यही कामनाएं बाण के समान चुभी हुई हैं। जब तक हृदय में किसी के बाण चुभा हो तब तक शांति नहीं मिलती है, परेशान होता है। जैसे ही बाण निकल जाता है स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही अनादि काल से जीवात्माओं के हृदय में जो बाण हैं वे बाण जब तत्व ज्ञान से निकल जाते हैं तो निर्वाण पद की उपलब्धि होती है। तो सभी जीव निर्वाण चाहते हैं। निर्वाण मतलब कि इस बाण से छुटकारा हो अविद्या दुख कामना वासना से। वही हम लोग स्वनाम धन्य इस कल्प तरु के संस्थापक प्रेमपुरी जी महाराज के स्वर्ण निर्वाण महोत्सव को मना रहे हैं। बार बार अपने गिरीश भाई संबोधित भी करते रहते हैं, क्योंकि उपनिषद में आता है महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम् क्रियते तनु। इतने भी यज्ञ महायज्ञ महोत्सव है, इनके द्वारा उस आत्मा को समझने के अनुकूल अपना अंतःकरण बनाना चाहिए। इसलिए महोत्सव मनाना भी एक शास्त्रीय कृत्य के अंतर्गत आता है। तो आइए प्रकृत विषय पर पहले नौ इस श्लोक का उच्चारण कर लें। ध्रुवम कश्चि सर्वम सकलम परस्त्वम ध्रुवमिदम् परो ध्रव्याध्रव्ये जगति गदति व्यस्त विषये समस्ते पे तस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्रेन्मि त्वाम् न खलु ननु दृष्टा मुखरता। यहां पर सृष्टि का वर्णन चल रहा है कि सृष्टि का कारण क्या है और सृष्टि सत है कि असत है। यही प्रसंग स्वाध्याय में एक महीने से चल रहा है। तद अनन्यतम आरंभण शब्दादिभ्य जो ब्रह्म सूत्र का विषय है उसी को यहां पर पुष्पदंताचार्य जी ने एक श्लोकों में चर्चा किया है। ब्रह्म सूत्र में भी यह चर्चा आती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले ब्रह्म का जिज्ञासा किया, जिज्ञासा के बाद में तब कहा जन्माद्यस्य यतः। यतः मतलब जिससे जन्म स्थिति और संसार का प्रलय हो उसका नाम ब्रह्म है। यथा से यह नहीं बतलाया कि शून्य है या क्षणिक विज्ञान है या प्रधान है या ब्रह्म, बस यथा कह दिया जिसके द्वारा संसार का सृजन हो पालन हो संहार उसका नाम ब्रह्म। पर यथा शब्द से क्या लेना चाहिए, जैसे वहां विचार का विषय है ऐसे यहां पर भी है। इसके पहले नवें श्लोक के पहले पुष्पदंताचार्य ने कहा था कि नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। तो स्वात्मा राम शब्द से उस ब्रह्म का कथन कर दिया गया। जो स्वात्मा राम है, अपने स्वरूप में रमण करता है, वो उस व्यक्ति को ये विषय मृग तृष्णा नहीं भटकाती है। क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ने उपनिषद में इसी बात को बतलाया है, अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह, ये जो विषय है ये अतिग्रह है। इसलिए अतिग्रह है क्योंकि जबरन मनुष्य को ये विषय अपने आप में घसीट करके भटकाते हैं। आप बहुत सावधान रहते हैं फिर भी सौंदर्य युक्त रूप आंखों को आकर्षित कर लेता है। डॉक्टर सावधान कर रहा कि खबरदार मीठा नहीं खाना, फिर भी ये मिष्ठान रूपी विषय जो अतिग्रह है जबरन जीव को खींच लेते हैं। तो विषय को अतिग्रह कहा, इंद्रियों को ग्रह बदलाया। ये जो विषय है ये मृग तृष्णिका के समान है और जीवात्मा को संसार में भटकाते रहते हैं। परंतु जो स्वात्मा राम है, जो अपने स्वरूप में आनंदित है, उसको ये कभी भी भटका नहीं सकते हैं। संसार का जो आनंद है इसको बताया विषय मृग तृष्णा, और ब्रह्मानंद को स्वात्मा राम शब्द से संबोधित किया। जो विषयानंद ये क्षणिक है, और क्षणिक होने से ये हमेशा परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित होने से हम उसके अनुभव को बार बार करना चाहते हैं, इंद्रियों से उपलब्ध करना चाहते हैं, पर उपलब्ध नहीं होता है। परंतु आत्मानंद स्थायी है। परंतु स्वात्मा राम तत्व क्या है, इसका विवेचन इस नौवें श्लोक से यहां पर बतला रहे। ध्रुवम कश्चित सर्वम, इस संसार को कुछ लोग कहते हैं ध्रुव, ध्रुव मतलब कि सत कार्यवादी सांख्य। यहां पर ध्रुव पद से सांख्य दर्शन लेना। कश्चित मतलब सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि जगत सत है, और कुछ मानते हैं अपरा मतलब कि अन्य, अन्य मतलब कि बौद्ध। ये कहते हैं अध्रुवम इदम सकलम, ये पूरा संसार अध्रुव मतलब कि असत है, क्षणिक है। परो ध्रोव्या ध्रोव्य, और तीसरे जो नैयायिक है जिनको हम आरंभवादी कहते हैं, ये आरंभवादी नैयायिक कहते हैं जगत ध्रोव्या ध्रोव्य, कारण रूप से सत्य है, कार्य रूप से असत्य है। इस प्रकार से आपस में तीनों विवाद करते हैं। जब सांख्य ने कहा कि संसार सत्य है, तो बौद्ध ने आक्षेप किया, यदि संसार सत्य है आप कह रहे कि बिल्कुल संसार घट पट मट सब सत्य है, तो फिर जो काम घड़ा से हो रहा है वही काम मिट्टी से होना चाहिए। उत्पत्ति के पहले भी मिट्टी में जब घड़ा मौजूद है तो कारीगर जो है दंड चाक चिवर के द्वारा घड़ा क्यों बनाता है, वह मिट्टी को उठाए उससे जल का आनयन कर ले। इसलिए जगत सत नहीं हो सकता है, सत होता तो उसकी उपलब्धि होती और क्रियाकलाप नहीं करना पड़ता। इस प्रकार से सांख्य का बौद्ध खंडन करते हैं और कहते हैं कि अध्रुवम क्षणिक विज्ञान सब कुछ है। क्षणिक विज्ञान में भी एक दोष है, यदि आप संसार को क्षणिक मान लेते हैं तो प्रतिभिज्ञा स्मृति नहीं बन सकती है। जो प्रतिभिज्ञा आप करते हैं कि मैं जो है दो वर्ष पहले हरिद्वार कैलाश आश्रम में गया था, वहां जाकर हमने जो है पूजा पाठ किया, गंगा स्नान किया, ये मन में स्मृति हो रही है, तो दो वर्ष पहले जो आपने दृश्य देखा, नजारा देखा, अनुभव किया, उसका मन में संस्कार पड़ता है। संस्कार के बाद 2008 में स्मृति होती है, याद आता है, किसी ने हरिद्वार की चर्चा की तो उस स्थान का याद आता है। तो यदि क्षणिक माने तो वह तो नष्ट हो गया, उसकी स्मृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके मत में क्षणिक आत्मा है, क्षणिक पदार्थ, सब कुछ क्षणिक है। क्षणिक मतलब क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा है, तो फिर उसकी स्मृति नहीं हो सकती है। इसलिए क्षणिक है सब कुछ, अध्रुव है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर न्यायिकों से पूछा कि भाई आप भी बताओ संसार कैसा है। तो उन्होंने कहा कि द्रव्या द्रव्ये, इसका अन्वय करना, एतस्मिन समस्ते जगति द्रव्या द्रव्ये व्यस्त विषय गदति परो गदति। ये जो समस्त संसार है, पूरा ब्रह्मांड, इसको कहते हैं द्रव्या द्रव्य। द्रव्या द्रव्य का अर्थ है परमाणु रूप से सत्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनके परमाणु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, इनको ये द्रव्य मानते हैं, सत मानते हैं, नित्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, इनको कहते हैं बिल्कुल द्रव्य है, सुनिश्चित है, नित्य है। और इसके बाद जो भी संसार है वह असत है। असत मतलब कि कारण में पहले नहीं था, बाद में कारीगर ने इनको प्रकट किया। नैयायिक जो है कट्टर ईश्वरवादी, ईश्वर को सिद्ध करते हैं। नैयायिक कहते हैं कि क्षित्यंकुरम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्। एक छोटा सा घड़ा बनाने के लिए कारीगर चाहिए, एक मकान दुकान बनाने के लिए कारीगर चाहिए। बिना कारीगर के जब कोई भी काम नहीं हो सकता है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने आप कैसे हो जाएगा? इतनी बड़ी नदियां हैं, सागर हैं, जो सागर की इतनी गहराई है, हिमालय की ऊंचाई है, नदियों के जल का प्रवाह है, इसको भी कोई न कोई करने वाला होना चाहिए। ये अपने आप नहीं हो सकता है, न शून्य से हो सकता है, न क्षणिक विज्ञान से, न प्रधान से। तो पारिशिष्यात जिसको बनाने वाला है वही ईश्वर है, क्योंकि अस्मदादि के द्वारा इनका निर्माण असंभव है। तो नैयायिक कहते हैं कि ईश्वर ने संसार को बनाया और दो विभाग किया, परमाणु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन तो ध्रुव है, नित्य है, और जो पदार्थ है असत्य है। इस प्रकार से न्याय दर्शन कहता है। ये आपस में ही विचार विवाद करते रहते हैं। तैर विस्मित इव, पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि मुझे इन सब बातों को सुनने के बाद बड़ी हैरानी होती है। विस्मित बोलते हैं आश्चर्य। तई मल्लय की दार्शनिकों के द्वारा इस संसार के विषय में इस प्रकार से विवाद करने पर मुझे बड़ा विस्मय हैरानी होती है। इतने बड़े बड़े आचार्य, न्याय दर्शन के आचार्य गौतम महर्षि, बौद्ध दर्शन के जन्मदाता गौतम बुद्ध, और सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल महर्षि, ये तो तीन प्रमुख आचार्य हैं। इसके बाद चार्वाक दर्शन है, जैन दर्शन है, और भी दर्शन है, इनको भी समय लेना ऊपर से। इतने बड़े ऋषि महर्षि होकर के भी बेचारे इस संसार के विषय विवाद करते हैं। कोई कहता है कि ये संसार असत है, कोई बोलता है सत है, कोई बोलता है सत असत उभय रूप है, कोई बोलता है स्वभाव से उत्पन्न हुआ, कोई बोलता है क्षणिक विज्ञान है, किसी ने कहा कि परमाणुओं से उत्पन्न हुआ, तो कोई बोलता है कि शून्य से ही उत्पन्न हुआ। आज भी विवाद चल रहा है। जो विवाद पुष्पदंताचार्य जी के जमाने में चल रहा था, वह आज भी विवाद का विषय है। जेनेवा में 10,000 वैज्ञानिक खोज कर रहे कि ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ किससे उत्पन्न हुआ, शून्य से उत्पन्न हुआ या परमाणु इसके मूल में या कोई शक्ति है। ये विवाद पहले भी चल रहा था। तो पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है, इसीलिए त्वाम स्तुवन न जी रेमी, मैं तो बस आपकी, महादेव का, शंकर का, परमात्मा का स्मरण कर रहा, स्तुति कर रहा हूं। क्योंकि इन लोगों की जो मुखरता धृष्ट है, ये बड़े धृष्ट और मुखरवादी हैं, जो परमेश्वर का भी अपलाप करते, खंडन करते हैं। कहते हैं जगत को बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं, अपने आप हुआ, शून्य से हुआ, क्षणिक विज्ञान से हुआ। इसीलिए मुझे इस बातों को सुनने के बाद हंसी आ रही है। जिस प्रकार से आज विवाद का विषय है कि संसार को परमात्मा बनाया अपने आप हुआ, वही विवाद इनके सामने भी चल रहा था। सांख्य कहता है जैसे कि एक सोना है, उस सोने में पहले से मूर्ति मौजूद है, स्वर्णकार उस सोने को तपा करके सांची में ढाल देता है, मूर्ति निर्मित हो गई। तो कारण भी सत्य है, कार्य भी सत्य है। इसी विषय को न्यायी कहता है कि जैसे मान लो कोई पाषाण है, पाषाण में मूर्ति पहले से मौजूद है, कारीगर अपद्रव्य को हटा देता है, अपद्रव्य को हटाते मूर्ति अव्यक्त हो जाती है। अब इसी चीज को सांख्य कहता है कि पहले सत था, न्यायी कहता है कि कारीगर ने उत्पन्न किया। देखो एक ही पाषाण खंड है, उस पाषाण खंड में से जो मूर्ति निर्मित हुई उसके विषय में जितने दार्शनिक उनका मतभेद है। सांख्य बोलेगा पहले से मूर्ति मौजूद थी, कारीगर अपद्रव्य को अलग किया। न्यायिक बोलेगा पहले मूर्ति असत थी, बाद में उत्पन्न हुआ। वेदांत बोलेगा कि उसी पाषाण का विवर्त है, पाषाण पर कल्पित है, आरोपित है। पाषाण नहीं होता तो मूर्ति निर्मित नहीं होती। कारीगर ने पाषाण पर अपने मस्तिष्क से एक आकार प्रकार बनाकर मूर्ति को बना दिया तो पाषाण पर आरोपित है। तो संसार के विषय में सारे लोग विवाद किया करते हैं। इसके विषय में उपनिषद में आता है, आरामम तस्य पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन। उस परमात्मा के आराम मतलब संसार को सभी देख रहे हैं पर उस परमात्मा को कोई भी नहीं देख रहा है। संसार का जो पदार्थ है इसके विषय में सारे दार्शनिक विवाद कर रहे हैं, ये जितने पदार्थ हैं सत्य हैं कि असत्य हैं कि उभय हैं कि क्षणिक रूप में है, परंतु इसको जो बनाने वाला कारीगर है उसको कोई भी विचार नहीं करता है। इसलिए वेदांती ने कहा कि ये विवर्त है। जिस प्रकार से टेलीविजन में आप सारे चलचित्र को देखते हैं, बड़ी बड़ी नदियां दिखाई पड़ती हैं, सागर है, पहाड़ है, पर्वत है, परंतु स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है, दिखाई सब कुछ पड़ रहा है, पर्दे पर सब कुछ दिखाई पड़ने पर भी वास्तव में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही चैतन्य पर इनाम रूपात्मक प्रपंच सब कुछ विवर्त है। विवर्त मतलब कि प्रातीतिक मात्र है, पर उस चैतन्य को छोड़कर कुछ भी नहीं है। पर अज्ञानी जीव केवल उन पदार्थों को पकड़ करके विवाद करता है। जो विवर्तवादी है, वेदांती है, ज्ञानी पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं, वह तो भगवान को प्रसन्न करने में लगा रहता है। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनके आशीर्वाद से ये जो संसार है इसको कि गौतम महर्षि ने दुखमय कहा, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम। ये जो है ना बौद्ध दर्शन के चार महावाक्य हैं, जैसे अपने आचार्य हैं तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसी प्रकार से वहां पर भी चार महावाक्य हैं। पहला है सर्वम शून्यम शून्यम, ये सारा पदार्थ शून्य रूप है, शून्य से उत्पन्न हुआ, शून्य में स्थिर है, शून्य में विलीन हो जाएगा। और दूसरा वाक्य है सर्वम दुखम दुखम, ये सारा संसार दुखमय है। तीसरा महावाक्य सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, ये सभी पदार्थों का अपना एक स्वभाव है, लक्षण है। चौथा है सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, ये सब कुछ क्षणिक है। ये चार महावाक्य के बौद्ध दर्शन में है। यहां कुछ दंताचार्य जी कहते हैं कि यही जो जगत अज्ञान काल में दुखमय प्रतीत होता है, जब अधिष्ठान का साक्षात्कार होता है तो यही जगत ब्रह्ममय आनंदमय प्रतीत होता है। जैसे कि कोई बढ़ई है, बढ़ई जब लकड़ी को देखता है तो उस लकड़ी में उसको दिखाई पड़ती है कितने इससे कुर्सियां बनेंगी, मेज टेबल बनेंगे, दरवाजे खिड़कियां निकलेंगी। सामान्य आदमी तो लकड़ी देखता है पर बढ़ई को वहां पर दिखाई पड़ता है इसमें किसने कितने मतलब कि सामान तैयार हो सकते हैं। ऐसे ज्ञानी इस संसार को ब्रह्ममय देखता है, चिन्मय देखता है, चैतन्य से अभिन्न समझता है, अवचेतन से भिन्न समझ करके उसी विराट विश्वात्मा का स्तुति करता है। तो पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं कि मैं इस विवाद में नहीं पड़ता हूं, बल्कि मैं तो विवर्तवाद का आश्रय लेकर उस ब्रह्म की परमात्मा का स्तुति कर रहा हूं। स्तुति क्यों कर रहे हैं तो पहले बतला चुके हैं, मम त्वेतां वाणीं गुण कथन पुण्डेन भवत पुनामेत्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। स्तुति का कोई प्रयोजन नहीं, बस इतना है कि हमारी वाणी शुद्ध हो, पवित्र हो और अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण से बुद्धि सामने उस परमात्मा को निश्चय करके अपने वाणी की पवित्रता के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। एक राजा था, उस राजा ने घोषणा किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास मेरे कोई संतान नहीं है और जो 7 दिन के अंदर आएगा उसको मैं राजा बनाऊंगा। पर एक परीक्षा के लिए कुछ नियम निर्धारण किया, सभी लोग आए तो हजारों की तादाद लग गई। राजा ने सोचा कि राजा तो एक को बनाना है, पर यहां उम्मीदवार हो गए 1000, अब हजारों में से कैसे चुनाव करें, सब बड़े योग्य थे, उनमें से छांट काट करना बड़ा कठिन काम था। छांट काट करने पर भी हजारों की उनकी संख्या हो रही थी। राजा ने नया तरकीब निकाला, उसने कहा देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं तो किसने किसी को राजा बनाऊंगा ही, पर हजारों उम्मीदवार हैं, मैं किसी को दुखी जो है नहीं करना चाहता, सारी हमारी प्रजा सारे जो है राजा बनने लायक हैं, योग्य हैं, मैं सबको राजा बनाऊंगा।